السلام علیکم. آج بھی رہے اکتوبر کی 10 تاریخ، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان نے جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیرباک کے کشمیر پر دیے گئے حالیہ بیان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس کی توثیق پر بھارت کے رد عمل کو غیر ضروری قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے کشمیر پر بین الاقوامی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا. جرمنی کی وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب بلاول بھٹو کے جرمنی کے دورے کے اختتام پر جمعے کو بان میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی مصروفیت میں شدت لانے کا خواہاں ہے، اور سمجھتا ہے کہ خود اس کا بھی کشمیر میں پائی جانے والی صورتحال کے حوالے سے ایک رول اور ذمہ داری ہے. ان کے اس بیان کی توثیق کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق پرامن حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے. نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے بیرباک اور بلاول بھٹو کے ان بیانات کے رد عمل میں اپنے ملک کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دو طرفہ معاملہ ہے، جس میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت یا ثالثی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باغچی نے کہا کہ عالمی برادری میں شامل تمام ایماندار ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی دہشت گردی اور خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ کریں. انہوں نے پاکستان کا نام براہ راست لیے بغیر کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور اس کے عوام نے کئی دہائیوں سے جاری تشدد اور ان کے بقول دہشت گردی کی وجہ سے تکلیف اٹھائی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے یہ ریمارکس غیر ضروری تھے، اور بیان کے بقول دراصل بھارت کی اس مایوسی کو بے نقاب کرتے ہیں جو اسے کشمیر پر ناجائز قبضے اور علاقے میں اس کی بے رحم قابض افواج کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے عالمی برادری میں الگ تھلگ ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تمام سرکاری بانڈز میچیور ہونے پر واجب الادا رقم صارفین کو ادا کرے گا، جبکہ تباہ کن سیلاب سے معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے فی الحال پیرس کلب میں شامل ممالک سے قابل ادائیگی قرض کو ری شیڈیول کرنے کے لیے نہیں کہے گا. انہوں نے بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے یا قرضوں کی ری شیڈیولنگ سے متعلق افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا. ایسے میں اپوزیشن جماعت کے بہت سے رہنما اور کئی معاشی ماہرین بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر حکومت بانڈز کی ادائیگیوں اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے رقم کا انتظام کہاں سے کرے گی، جبکہ معیشت پہلے ہی بری حالت میں ہے اور سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آڈیوز لیک ہونا قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس سے وزیراعظم کے سرکاری دفتر اور سرکاری گھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات نے جنم لیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب وہ وزیراعظم تھے تو ان کی سرکاری رہائش گاہ کی محفوظ ترین فون لائن کی بھی جاسوسی کی گئی تھی. انہوں نے اندیا دیا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ لیک ہونے والی ان آڈیوز کی صداقت کی تصدیق ہو سکے. عمران خان کے مطابق اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات کو دنیا بھر کے سامنے عیاں کیا گیا ہے. راولپنڈی کی اینٹی کرپشن کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ राणा सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया है कि मुलजिम के जो नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उन्हीं पर अमल दरामद करवाते हुए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने कलर कहार में मुबैना अराजी फ्रॉड में राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदम पेशी पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने हुकाम से कहा कि वो इस्लामाबाद जाकर उनकी गिरफ्तारी की दोबारा कोशिश करें। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात में स्कूल ले जाने वाली गाड़ी पर नामालूम अफराद ने सोमवार के सुबह फायरिंग करके ड्राइवर को हलाक और दो कमसिन तलबा को जख्मी कर दिया। मालकन डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इस वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि यह वाकया तहसील चारबाग के इलाके गली बाग में पेश आया। इस वाकये की इतला मिलते ही खाजाखेला हस्पताल के सामने और मंगोरा शहर के मसरूफ तरीन चौक में मुजाहरे किए गए, जिसमें मुकर्रीन और शुरका ने हमले में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। निजी स्कूलों के तंजीम के अहदेदारों ने सोमवार ही से हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने आबाई जिले स्वात में होने वाले इस वाकये का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को इस हमले में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। तालिबान के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने इतवार के रोज काबुल में चार माह की हिरासत के बाद एक और अफगान सहाफी को रिहा कर दिया है। मीडिया के हामी तंजीमों ने सूबे दाईगुंडी में रेडियो आफ्ताब के मालिक और चीफ मैनेजर मिर्जा हसनी की रिहाई का खैर मकदम किया। अफगान सहाफियों के मराकज AGC ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान अफगान सहाफियों की गिरफ्तारियों और उनके लिए धमकियों का सिलसिला जारी रहा। तालिबान इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने दो हफ्ते कबल पजवक न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर अब्दुल हन्नान मोहम्मदी को भी रिहा कर दिया था। वो चार माह तक तालिबान की हिरासत में रहे थे। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के खसूसी एलची थॉमस निकलसन ने काबुल के एक हफ्ते के दौरे और ब्रसल्स वापसी के बाद कहा कि एक ट्वीट कभी भी हकीकी गुफ्तगू की जगह नहीं लेता और हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा और कसीर जहती होती है। यूरोपीय यूनियन शनाख्त किए बगैर और अपने मेयार की बुनियाद पर राब्ताकारी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी एजेंडे पर बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल तर्जमान नौपुर शर्मा के मुतनाज़िया बयान पर खलीजी मुल्कों की जानिब से सख्त एहतजाज के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज बयानात का जो सिलसिला रुक गया था, ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर शुरू हो गया है। शिदत पसंद हिंदू तंजीम विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू ग्रुपों के जेर एहतमाम इतवार को दिल्ली में मुनक़िदा एक अवामी जलसे में VHP और BJP के रहनुमाओं की मुतनाज़िया तकारीर में मुबैना तौर पर मुसलमानों के बॉयकॉट और हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि उसने प्रोग्राम के इनेकाद के लिए पुलिस से इजाजत ली थी, जबकि पुलिस ने इस दावे की तरदीद की और मुंतजमीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उसका कहना है कि तकरीरों की फुटेज की जांच की जा रही है, रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस समेत दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से मुबैना नफरत अंगेज तकरीरों की मजम्मत की जा रही है और मुकर्ररीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। ईरान में एक 22 साल खातून की हलाकत पर होने वाले मुजाहरों के मरकज मगरबी ईरानी शहर की सड़कों पर बाज़ाहिर गोलियों और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं और करीबी गांवों में मुबैना तौर पर कम अज़ कम एक शख्स सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों मारा गया है। ये खबर कारकुनों की जानिब से दी गई है। 16 सितंबर को तेहरान में मुल्क की मोरालिटी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की हलाकत पर ईरान भर के शहरों कस्बों देहातों में मुजाहरे हो रहे हैं। तेहरान और दीगर मकाम पर ऑनलाइन वीडियोज़ में खवातीन को हिजाब के बगैर सड़कों पर मार्च करते दिखाया गया है, जबकि दीगर मुजाहिरीन हुकूमत से तनाज़ आरई करते हैं और सड़कों पर आग लगाते हैं। एहतजाज का यह सिलसिला चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव में पीर के रोज मोहलिक रूसी मिसाइलों के हमले में यूक्रेन की फौज के बकौल 75 मिसाइल दागे गए। कीव पुलिस ने कहा कि ज्यादातर हमले शहर के वस्त में हुए, जिनमें कम से कम 5 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए। यूक्रेन की फौज ने कहा कि उसने रूस के 41 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें तबाह करने और मिटाने की कोशिश कर रहा है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि हवाई हमले के सायरन पूरे यूक्रेन में बजते रहे। कीव पर आखिरी हमला जून में हुआ था। हमले के इब्तदाई मरहले में जब रूसी अफवाज की पेशकदमी के दबाव का सामना था तो कीव निस्बतन पुरसुकून था, क्योंकि लड़ाई मशरिकी और जुनूबी यूक्रेन में मरकूज थी। फ्रांस के सदर मैक्रोन के दफ्तर ने कहा है कि उन्होंने फौजी इमदाद समेत यूक्रेन के लिए हिमायत बढ़ाने के फ्रांस के अज़्म का इआदा किया है। अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों में नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात से ठीक एक माह कबल हफ्ते के रोज हजारों खवातीन और मर्दों ने वीमन मार्च में हिस्सा लिया। मार्च के मुंतजमीन के मुताबिक इस मुजाहरे का मकसद मिड टर्म इलेक्शन से पहले तौलीदी हुकूक और नस्ली इंसाफ के हामियों को इकट्ठा करना था। अमरीका में इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1974 के अदालती फैसले को कलदम करार देने के बाद इस्कात हमल का यह मामला उन इंतखाबात के दौरान एक अहम मसला बनकर उभरा है। हफ्ते के रोज इन रैलियों में बच्चों से लेकर बड़ों तक औरतें और मर्द शामिल थे। अमरीका में आज पीर को कोलंबस डे और आबाई अमरीकी बाशिंदों का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में आम तातील होती है, जिसका आगाज 1971 में किया गया था। कोलंबस डे सन 1492 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब क्रिस्टोफर कोलंबस की क्यादत में स्पेन के 3 बैरी जहाज एक जजीरे पर लंगर अंदाज हुए, जिन्हें अब बहामास कहा जाता है। कई तारीखदान 12 अक्टूबर 1492 के दिन को आलमी तारीख का एक अहम तरीन दिन करार देते हुए कहते हैं कि बहामास के जजीरे में 3 छोटे बैरी जहाजों की अव्वलीन आमद ने आने वाले अशरों और सदियों में दुनिया की तारीख ही बदल डाली। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। आप अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।